ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ओम जो परमेश्वर का निजी नाम है, ओम अक्षर से परमात्मा का सृष्टिकर्ता, इस संसार को बनाने वाला, पालन करने वाला और श्रृंगार करने वाला, इन सब भावों को व्यक्त करने वाला है. भूर्भुवः स्वः जो व्याहृति है, व्याहृति का अर्थ होता है जो अलग अलग वेदों से चुना गया है. भूहु वो सत है जो संसार में अकेला सभी संसार पर सत सत्य चीजों पर राज करने वाला सत है. इस दुनिया में तीन चीजें सत हैं जो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, सत्ता में रहते हैं. एक परमात्मा, एक आप, आपकी और हमारी आत्माएं, जीवात्मा, और ये संसार. फर्क सिर्फ इतना है कि संसार बदलती रहती है, परिणामी है, चेंजेबल है. आत्मा शरीरों को ग्रहण करता रहता है, पैदा होता है, मरता है, पर अंदर की आत्मा हमेशा नित्य है. संसार की जो बेसिक एलिमेंट्स है वो हमेशा नित्य है, पर परमात्मा इन सब से अलग है. उसमें कोई बदलाव कभी नहीं होता है. वो नित्य भी है पर उसमें कोई बदलाव भी नहीं होता. ना वो किसी शरीर को धारण करता है सुख या दुख भोगने के लिए. ऐसा परमात्मा जो सत है, इसका प्रमाण यही है कि संसार में हर प्राणी जो कोई भी पैदा हुआ है, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई मरना नहीं चाहता. कोई 400 साल जिए या 500 साल जिए या 4 साल जिए या 4 दिन जिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता. इसका मतलब है कि हर कोई अमृत पाना चाहता है, अमर होना चाहता है. यह अमरत्व का अर्थ यही है. जब तक व्यक्ति किसी चीज को रियलाइज नहीं करता, जिस चीज को वो नहीं जानता, वो उस चीज को पाने के लिए कभी भी कोशिश नहीं करता. इवन आपके सपने में भी, आपके ड्रीम में भी, इवन आपके इमेजिनेशन भी वहीं तक जाता है जहां तक आपका रियल लाइफ में नॉलेज होता है. इमेजिनेशन या फिक्शन या आपकी ड्रीम स्टेट सिर्फ उनका मिक्सचर है. कोई अनहोनी, कोई यूनिक नहीं होता है. जो है उनको मिलावट करके एक नई नई चीजें बनाते हैं. अगर हर प्राणी अपने अंदर से यही इच्छा रखता है कि मैं हमेशा बना रहूं, ना मरने का अर्थ होता है हमेशा बना रहना, हमेशा सत्ता में बनी रहूं, जिसी को आप कहते हैं इटर्नलिटी. इसका मतलब है कि उसको रियलाइज हुआ है उस इटर्नलिटी की, इसीलिए वो उसको पाने की चाहत रखता है. वो भूल चुका हो कब किया, कैसा किया. तो संसार में कोई परम सत्य है, परम सत्ता है, जिसको पाने के लिए हर प्राणी नोइंगली अननोइंगली बाय नेचर कोशिश करता रहता है. हमारी आपकी जिंदगी के सारे प्रयास, सारे कोशिश होते हैं अपने आप को ज्यादा दिन तक जिंदा रखने के लिए. इवन आप पैसा कमाते हैं या आप खाना खाते हैं या आप किताबें पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी सबकॉन्शियस में जो गोल होता है, जो पर्पस होता है, वो यही है कि मैं अपने आप को ज्यादा दिन तक जिंदा रख सकूं. इवन इंसान जो पैसा होर्ड करता है, होर्डिंग करता है, उसका भी यही लक्ष्य है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दिन जी सकूं. तो यही साबित करता है कि संसार में कोई चीज ऐसी है जो परम सत है, जो हम इस लाइफ में नहीं पा पाते, पर हमें उसका स्वाद पता है, और स्वाद पता होने से हम उसको पाने की कोशिश करते हैं. वो परमात्मा सत है. वो भुवः का अर्थ होता है भुवः अवकल्पने. अवकल्पन का अर्थ होता है चिंतन करना, ज्ञान करना, और ज्ञान चेतना का विषय होता है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस का विषय होता है. जिस जिस में प्राण है, जिस जिस में चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसी में ज्ञान होता है. किसी भी मैटर में, वो पहाड़ हो, पर्वत हो, हवा हो, पानी हो, आपका घर हो, उनमें कभी भी कोई रंच भर के भी जानने की शक्ति नहीं है। आप उनसे बात करो, आप उनसे कुछ भी करो, कैसा भी व्यवहार करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कोई भी प्राणी है जिसके अंदर, प्राणी का मतलब जिसमें प्राण हो, और प्राण वही होता है जहां चेतना होती है। चेतना का अर्थ होता है जहां आत्मा होती है। चेतना आत्मा का लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जहां जहां आत्मा होती है वहां उसके अंदर कॉन्शसनेस होती है। इसीलिए प्राचीन काल से हम पेड़ पौधों में भी आत्मा को मानते आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मान्यता के लिए मानते हैं, समझ के साथ मानते आए हैं कि पेड़ों में भी जान होती है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शसनेस होती है, चेतना होती है, उसमें एक्शन रिएक्शन होता है, उसमें लिमिटेशन हो सकता है पर होती है। और जिसमें भी प्राण है, कॉन्शसनेस है, उसका पहला सिम्टम है कि वो जानता है, वो समझ सकता है, वो फील करता है। दुनिया में संसार है, जीवात्मा है और परमात्मा है। ये संसार जड़ है, मैटर है, उसमें कोई ज्ञान की कोई शक्ति नहीं है, चेतना की कोई शक्ति नहीं है। जब उसी जड़ वस्तु में कोई चेतना आ जाती है, जैसे आपका शरीर जड़ है, पर जैसे ही शरीर में चेतना आ जाती है, फिर आप जानने समझने की क्षमता रखते हैं। पर परमात्मा सर्वज्ञ है, जड़ में कोई चेतना नहीं है, चेतना सिर्फ आत्मा में और परमात्मा में है। पर हमारी चेतना, हमारा ज्ञान एक सीमित है, लिमिटेड है, अल्पज्ञता है। एक सर्वज्ञता का भी स्थान है जहां ओमनिसिएंसी है, सब कुछ ज्ञान है। कैसे पता चले? क्योंकि कोई भी प्राणी हो, कितना भी जानता हो, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, कितना भी ज्ञान उसको हो। और ये हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी लोग कहते हैं, जिस व्यक्ति में जितना अधिक ज्ञान होता है वो इतना ज्यादा असंतुष्ट होता है, इतना ज्यादा डिससैटिस्फाइड होता है। क्यों? ज्ञान जब बढ़ता जाता है, व्यक्ति को अपनी मूर्खता का एहसास होता जाता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितना ज्ञान का भंडार है, और जितना मैं जानता हूं वो उसके सामने कितना छोटा सा है। इसलिए हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं, शास्त्रों में कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता और जो बहुत कुछ जानता है, दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों अपने आप को अबोध समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, कम जानने वाला समझते हैं, और दोनों के लिए रास्ता खुला है कि वो जान सकते हैं। पर खतरनाक वो व्यक्ति है जो थोड़ा सा जानता है और सोचता है कि मेरा ज्ञान हो गया है। ये अल्पज्ञानी बहुत खतरनाक होते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे शास्त्रों में है, दुनिया में किसी भी कल्चर में, किसी भी भाषा में जो फ्रेज है, हर लैंग्वेज में ये फ्रेज आपको मिलेगा कि कम जानने वाला आदमी आग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो इसीलिए खतरनाक का कारण सिर्फ इसीलिए कि कम जानने के बाद, थोड़ा सा जानने के बाद एहसास होता है कि मैं जान गया हूं। और जानने की प्रक्रिया अगर समाप्त हो गई, द प्रोसेस ऑफ नोइंग अगर स्टॉप हो गया, तो व्यक्ति वो जो दो चार छोटी मोटी चीजें जानता है, फिर उसी को दुनिया भर में बांटता है, आधे कचरे ज्ञान को, और खुद उस आधे कचरे ज्ञान से प्रयोग करता है, और लाइफ में आधे कचरे ज्ञान से कितना नुकसान होता है वो हम और आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो देवियों, सज्जनों, तो इसीलिए व्यक्ति के अंदर जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा वो उतना ज्यादा विनम्र होता जाता है, उतना हम्बल होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसको यह एहसास होता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। आजकल तो जैसे जैसे ज्ञान का दायरा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न होता जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती जाती है, साइंस में तरक्की होती रहती है, तो ज्ञान एक तरह के विस्फोट की परिस्थिति में है। चारों तरफ इतना ज्ञान आ चुका है, आदमी एक एक सब्जेक्ट में भी पूरी तरह पूरे जीवन बिताने के बाद समझ नहीं सकता, उसको जान नहीं सकता। आप मेडिकल साइंस में है, आप फिजिक्स में है, आप केमिस्ट्री में है, आप इकोनॉमिक्स में है, आप इंजीनियरिंग में है, आप आर्ट में है, आप म्यूजिक में है, आप डांस में है, आप रिलीजियन में है, आप स्पिरिचुअलिटी में है, आप किसी भी फील्ड में है। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे आपको लगेगा आप जितना जानते, आपका अपना फील्ड में भी इतना कुछ जानने को बाकी है कि आप किसी किनारे पर भी नहीं खड़े हैं। इसका अर्थ है कि जितना भी हम जानते हैं कम जानते हैं, और जो जानता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है, उसकी जानने की इच्छा बनी रहती है। इवन जो थोड़ा सा जानता है और जानने के बाद उसके अंदर ये अहंकार आ चुका है कि मैं बहुत को जानता हूं, हो सकता है वो चीजें जानने के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखा है जो चीजें वो थोड़ी बहुत जानता है, पर उसका जो नेचर है जानने की इच्छा वो बंद नहीं होती है, वो जानने की इच्छा दूसरे तरफ जाती है। रास्ते में 10 लोग मिलके बात करते हैं तो भी हमारा नजर चला जाता है। ये नजर चला क्यों जाता है? जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, क्या हो रहा है। कहीं थोड़ा सा धुआं देखा नजर चला जाता है। क्यों चला जाता है? अननोइंगली, एफर्टलेसली, आप कोशिश करें ना करें आपका माइंड वहां चला जाता है। यो क्या मतलब है? कुछ जानने की इच्छा है। आप कितना भी जानते हैं आपकी जानने की कोई सीमा नहीं होती है। इसीलिए व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ जानने के लिए लगा रहता है। अगर नोइंगली नहीं तो अननोइंगली भी लगा रहता है। अगर उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया तो भी वो लगा रहता है कि बीवी किचन में क्या करती रहती है, पति अखबार में क्या पढ़ता रहता है। आपका जो नेचर है वो आप रोक नहीं सकते। वो अलग बात है कि जो जानना की चीज है वो जानने की इच्छा आपकी खत्म हो गई है अहंकार के कारण, ईगो के कारण, पर जो आपका नेचर है वो जानने की इच्छा और कहीं भटकती रहती है और कहीं जाती रहती है। और जिस दिन आप उस पूर्णता को जान जाते हैं, जिसको शास्त्र में कहते हैं जिसको जानने के बाद और कुछ जानने को बचता नहीं है, विदाहमेतम परमं पुरुषम, मैं उस परम तत्व को जाना जिसको जानने के बाद और कुछ जानने को बचा ही नहीं है, जिसको आप सेल्फ नॉलेज कहते हैं, खुद को जानना, जिस दिन व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, अपनी रियलिटी को जान जाता है, उस दिन उसको दो ज्ञान साथ साथ होते हैं। उसकी अपनी असलियत को, अपनी रियलिटी को समझानता है, उस दिन उसको यह भी पता लगता है कि इससे भी बड़ी और एक रियलिटी है जिसके अंदर ये हम बास करते हैं, वो परम है, वो सुप्रीम है, हम आत्मा है, सिंपल है, छोटे हैं, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, भोगने की इच्छा, हर तरह की डिजायर से मुक्ति मिल जाती है। तो वो जो परम सत्ता है, जो परम ज्ञान है, वो भुवा है। वो भुवा शब्द उस ईश्वर की वो चेतना को व्यक्त करता है जो परम ज्ञान है, परम चेतना है, परम आत्मा है। भूर्भुवः स्वः, स्वः का अर्थ होता है आनंद, ब्लिस। दो तरह के सुख आनंद हमारे जीवन में होता है, भाषा की मजबूरी के कारण हमारे मुंह से सुख निकल जाता है, आम भाषा में आप खुशी कहते हैं, जो सुख का बिगड़ा हुआ रूप है। सुख की सिंपल डेफिनेशन है, ये संस्कृत भाषा बड़ी खूबसूरत भाषा है। इस भाषा की एक खास बात है, अगर इस भाषा को आप बड़े डीपली जानते हैं, इसकी शब्दों की एटिमोलॉजी को समझते हैं, तो 50-70% फिलॉसफी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उस शब्द में ही, उस शब्द की एटिमोलॉजी में ही उसकी फिलॉसफी छुपी होती है। जैसे कोई आपको पूछे दुख क्या है, सुख क्या है, आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताएंगे, नहीं तो किसी ज्ञानी व्यक्ति की किताबें पढ़ेंगे, किसी फिलॉसफर के डेफिनेशन ढूंढेंगे कि ये हैप्पीनेस क्या चीज होती है, सुख क्या है, दुख क्या है। वैसे तो हम सब बोलते रहते हैं, पर इस संस्कृत भाषा की अपनी एक चमत्कारिता है, खूबसूरती है। इस शब्द के व्युत्पत्ति में ही, इसे एटिमोलॉजी में ही इसका अर्थ छुपा होता है, इसका डेफिनेशन छुपा होता है। ख कहते हैं इंद्रियों को, आकाश। ख का मतलब होता है होल, जिसमें कोई छेद हो। ये आकाश को भी ख बोलते हैं, क्योंकि पूरा पूरा आकाश तो वैक्यूम है, ये पूरा संसार वैक्यूम है ना। इंद्रियों को भी, सेंसेस को भी ख बोलते हैं, क्योंकि यहां भी वैक्यूम होता है, जहां जहां वैक्यूम होता है छेद होता है। शून्य जीरो को भी ख बोलते हैं, क्योंकि वो तो वो वैक्यूम है। तो इंद्रियों को भी ख बोलते हैं। सु मतलब अच्छा, जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख है, जो इंद्रियों को दुख खराब लगे वो दुख है। वो बच्चे हो, धन हो, खाना हो, घर हो, लग्जरी हो, लेजर हो, कुछ भी हो, जो हमें लगता है ये खुशी देने वाली चीजें हैं, वो खुशी देने वाली चीजें नहीं होते हैं। खुशी तो आपके इंद्रियों में छुपा होता है, उसकी जो पावर है वो हमारे आपके इंद्रियों में छुपी होती है। जो चीजें कल तक मुझे अच्छा लगता था, जिससे मुझे सुख मिलता था, वो आज सुख नहीं देता है। कल तक मेरा बच्चा था, उसके बिना मैं नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि वो मेरा बच्चा था, वो मेरे मुझे मां बोलता था या पापा बोलता था, मुझे रिस्पेक्ट करता था, मुझे मानता था। आज वो गालियां देता है, पिटाई करता है, दुख देता है, मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी करता है। अब वो बच्चा सुख थोड़े देता है, वो दुख का कारण बनता है। बच्चा तो वही है, आपका पैदा किया हुआ बच्चा है, पर आज वो दुख है, क्योंकि आपके इंद्रियों को, इंद्रिय मन भी पार्ट ऑफ इंद्रिया है, मन को अच्छा नहीं लगता। वो खाना जो आपको मजा आता है, आपको कोई मिठाई पसंद है, कोई खाना पसंद है, वो खाना जिसके लिए आप तड़पते हैं, तरसते हैं, बार बार डिमांड करते हैं, और एक दिन कोई एक दो किलो लड्डू लाकर आपके पास रख दे, क्योंकि पता चला आपको लड्डू पसंद है, और आपको कहता है कि आपको रोज लड्डू खाना है, सुबह लंच में देता है, डिनर में देता है, आपको ब्रेकफास्ट में देता है, स्नैक्स में लड्डू देता है, किसी के घर गए हो उसको पता चला आपको लड्डू पसंद है, चारों टाइम लड्डू खिलाता है, चाय में भी लड्डू, डिनर में भी लड्डू, लंच में भी लड्डू, अगले दिन सुबह भी देखा फिर ब्रेकफास्ट में फिर लड्डू रखा है, लंच में देखा फिर लड्डू रखा है, तीसरे दिन आप भागने की कोशिश करते हैं उसके घर से, बोलते हैं भाई मैंने मुझे लड्डू पसंद है, पर ऐसा नहीं है कि तू 24 घंटे लड्डू रखता है, नहीं, वो बुद्धू आदमी है, आपने कहा था कि आपको लड्डू पसंद है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर में आपको वही खिलाऊं जो आपको पसंद है, वो 24 घंटे लड्डू खिलाता है, तीसरे दिन आप घर छोड़ के भाग जाएंगे, उसके घर जाने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि फिर दोबारा लड्डू खिलाएगा। लड्डू तो आपको पसंद है, लड्डू नहीं मिलता था आप तरसते थे, उससे आपको सुख मिलता था, अब क्या हो गया कि आप लड्डू से इतने दुखी हो गए, इंद्रियों को अब वो अच्छा नहीं लगता। कोई भी चीज जब इंद्रियों को अच्छा ना लगे तो वो दुख का कारण बनता है। राजा को जो पावर मिलता है तो वो खुश होता है, सन्यासी को जो पावर मिलता है वो दुखी होता है, गृहस्थी को जो धन मिलता है वो खुश होता है। सन्यासी को, मैं असली सन्यासी की बात करता हूं, असली गृहस्थी को अगर धन मिलता है वो दुखी होता है। हमारे एक टीचर थे, गुरुजी थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। सौभाग्य हुआ कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, जिस गुरु के टीचर के पास, वहीं पर मैं नौकरी करता था। पहले भारत में टीचर वगैरह के तनख्वाह बड़े कम होते थे, पिछले 10-15 साल से काफी पे वगैरह बढ़ गए और काफी अच्छे पैसे मिलने लगे। तो छठे पे कमीशन लागू हुआ, अभी तो सातवां आया, तो उनके तनख्वाह बहुत बढ़ गए। तो एक एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह भी लाख के करीब हो गए, तो एसोसिएट प्रोफेसर हो गए थे तो उनका करीब 1.25-1.5 लाख रुपए मिलते थे। मुझे एक दिन बोले, बोले सूर्य इतना पैसा सरकार देता है, पता नहीं ये क्या करेंगे इस पैसे से, घर तो ऑलरेडी है, इतना पैसा देते हैं आदमी को, मुझे समझ में नहीं आता है ये पैसा करना क्या है, बकवास, इतनी तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिए हम लोगों की। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, गृहस्थी हैं बेचारे, पर अंदर वो संन्यास का भाव भरा पड़ा है। जितना काम चले उतना पैसा मिल जाए, उससे ज्यादा तो जहर होता है, क्योंकि उसको फिर उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो उनके एक बस की बात नहीं, उनको मजा आता है पढ़ने में, लिखने में, रिसर्च करने में, अपने विद्यार्थियों के साथ डिस्कस करने में, डिबेट करने में। वो पैसे को हैंडल करना ये बड़ी मुसीबत की बात है। इस सबके लिए मुसीबत की बात नहीं है, लोग तो तरसते हैं, लोग तो मारते काटते पैसे के लिए। उस आदमी के लिए पैसा दुखदाई है क्योंकि उसके इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता, उसके मन को और कुछ अच्छा लगता है। पैसा चाहिए पर उतना जितना उसका गुजारा चल जाए, उसके फ्यूचर के लिए थोड़ा सेव हो जाए, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हो जाए, रहने के लिए घर हो जाए, उससे ज्यादा उसके लिए जहर जैसा लगता है। पर सबको तो नहीं लगता ना। तो पैसा सुख देता है ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसको पैसे में सुख मिलता है या ज्ञान में सुख मिलता है, या पैसा देने में सुख मिलता है या पैसा लेने में सुख मिलता है। तो सुख और दुख इंद्रियों का विषय है, जो खा को इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख है, जो इंद्रियों को बुरा लगे वो दुख है। हमारे आम जिंदगी में जिसको हम सुख दुख कहते हैं वो सिंपल है, जो मेरे मन को अच्छा लगे, जो मेरे मन को अच्छा ना लगे। पर आनंद कुछ और चीज है, आनंद के साथ इंद्रियों का कोई लेन देन नहीं है। जो आपके इंट्यूशन जिसको आप कहते हैं, वो आपके अंदर से आता है, बाहर के किसी कनेक्शन के बिना आता है, बाहर के किसी इन्फ्लुएंस के बिना आता है, वो अंदर से आता है। कभी कभी हम अपने इस आम जिंदगी में भी उसको रियलाइज करते हैं। जब लाइफ में आप कुछ अच्छा काम करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी एफर्ट, आपसे कुछ अच्छा काम हो जाता है, आप किसी कोई एक्सपेक्ट नहीं करते थे, आपसे किसी के लिए कोई अच्छा काम हो गया और जेन्युइनली हो गया, आपको अंदर से एक अजीब सी खुशी मिलती है। वो खुशी वो आपकी इंद्रियों की खुशी नहीं है, उसमें कोई सेंसेस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ईगो का कोई लेन देन नहीं है, जिसमें ईगो को सेटिस्फेक्शन मिले ऐसा कुछ नहीं है। एक अजीब सी खुशी, वो खुशी क्या है, आपके अंदर की उस आत्मा का जो स्वभाव है, आनंद स्वरूप है, उसका एक झलक है। जब भी एक अच्छा आदमी, ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा आदमी उससे कोई गलत काम हो जाए, उसको कितने दिन तक नींद नहीं आती है। कुछ गलत बोल दे, कुछ गलत कर दे, गलती से करे, जानबूझ के करे व अनजाने में करे, कितनी उसके अंदर बेचैनी होती है। वो बेचैनी क्या है, वो अंदर की आवाज है, उसको जो फीलिंग है, जो गिल्टी फीलिंग है कि मेरे से कुछ गलती हुई, उसमें कोई ईगो नहीं है, वो किसी को बताता नहीं है, वो किसी को शेयर नहीं करता, उसको पता है कि उसने एक झूठ बोला, उस झूठ बोलने से उसकी रात की नींद खराब हो गई, उससे कुछ अच्छे काम हुए, ऐसा लगता है कि मानो वो आसमान में उड़ता है, इतना लाइटनेस फील करता है।
थोड़ी थोड़ी झलक हमारे लाइफ में होता है। जिस व्यक्ति का जितनी आत्मिक शक्ति प्रबल हो, विल पावर जितना स्ट्रांग हो, आत्मा जितना पवित्र हो, मन जितना साफ हो, उसको उतना ज्यादा बुरे काम करने पर बुरा लगता है, अच्छे काम करने पर अच्छा लगता है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अगर वो करता हो तो। ये झलक है आपकी अपनी असली आत्मा के स्वरूप का। पर वो परमात्मा शुद्ध आनंद स्वरूप है, जहां आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। वो आनंद जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इस ट्रांसेंडेंट बियॉन्ड योर सेंसुअल नॉलेज, उसी को पाने के लिए योगी ऋषि तपस्या करते रहते हैं, जीवन को वैराग्य का पालन करते रहते हैं, उस परम आनंद को पाने के लिए। वो स्व है। स्व शब्द आपके आम भाव बोलचाल में आप स्वर्ग बोलते हैं, वो स्व का एक बिगड़ा हुआ रूप। शब्द तो सही है, पर उसका जो कंसेप्ट है, जो परसेप्शन है, वो एक बिगड़ा हुआ परसेप्शन है। स्व मतलब आनंद है, और ग मतलब जाना, पाना। जिसके द्वारा आनंद की प्राप्ति हो वो स्वर्ग है। जैसे हमारी आम भाषा में कहते हैं, अच्छा काम करो स्वर्ग मिलेगा, ईश्वर की आराधना करो स्वर्ग मिलेगा, पूजा पाठ करो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का सिंपल अर्थ है कि जब आप अच्छा काम करते, दैट इज द वे टू गेट द ब्लिस, यही रास्ता है उस परम आनंद को पाने का। जब अच्छा काम करने का कंसेप्ट बदल गया, अब अच्छा करते हो बुरा करते हो मायने नहीं रखता, अब यह मायने रखता है कि आपका फेथ, आपका बिलीव है कि नहीं है। तो स्वर्ग अब सुख का साधन नहीं बना, स्वर्ग एक जगह का नाम बन गया, जहां पर देवताएं रहती हैं, जहां पर कल्प वृक्ष रहता है। कल्प वृक्ष क्या है? जो मांगो वो मिल जाएगा। देवता क्या है? जो कभी मरते नहीं है, हमेशा जवान रहते हैं, कभी बुढ़ा नहीं होते हैं, जहां हर तरह की जो कामनाएं करो मिल जाता है। व्यक्ति जैसे जैसे अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगा, बिना काम के फायदा उठाने की कोशिश करने लगा, तो रिलीजियस लोगों ने भी उस तरह के इमेजिनेशन पैदा करने लगे कि स्वर्ग हेवन एक ऐसा जगह है, किसी का चौथे आसमान पर है, किसी के सातवें आसमान पर है, किसी की कैलाश पर्वत में है, किसी के खीर सागर पर है, किसी का अलग अलग जगह पर है, भूलोक में है, अलग अलग जगह पर। ये जो इमेजिनरी स्वर्ग बने, उन सबके अंदर एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है? कि वहां आपको वो मिलेगा जो आपको इस जीवन में नहीं मिलता है। क्या? यहां आप बुढ़ा हो जाते हैं, वहां बुढ़ा नहीं होंगे। ये आदमी की जो ना पूरी होने वाली ख्वाहिशें हैं, वो सब ख्वाहिशों को पूरा करने की सपना दिखाया गया कि वहां मिलेगा। वहां आप कभी हमेशा जवान रहेंगे, यहां जो चाहे वो नहीं मिलता है, वहां कल्प वृक्ष मिलेगा। बस सोचने की जरूरत है कि बढ़िया सा घर चाहिए, आंख खोला तो घर बना बनाया मिल जाएगा। करने की भी जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देने की भी जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। यहां दवाई खा खा करके दुनिया भर के मुंह में लेप लेप कर भी क्या करें, बुढ़ापा आ ही जाती है, झलक जाती है, और वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा जवान रहेंगे। नित्य वसंत है। ये वसंत क्या चीज होता है? स्प्रिंग सीजन है। स्प्रिंग सीजन आपको हमें अब आजकल कम समझ में आएगा। क्यों समझ में कम आएगा? क्योंकि आपके तो 12 महीने ही स्प्रिंग चलते हैं। अब एयर कंडीशनड घर में रहते हैं, एयर कंडीशनड गाड़ी में रहते हैं, एयर कंडीशनड ऑफिस में रहते हैं, आपका मंदिर भी एयर कंडीशनड है, आपकी योगा भी एयर कंडीशनड घर में करते हैं, तो ये नित्य वसंत तो आप यही क्रिएट कर देते हैं। वसंत मतलब जहां मौसम सारे एक अच्छा अच्छा हो। ध्यान रखिए, स्वर्ग उन लोगों का बनाया हुआ है जो 1000-2000 साल पैदा हुए, जब एयर कंडीशन सिस्टम नहीं था। ध्यान रखिएगा, स्वर्ग उन लोगों के द्वारा बनाया हुआ है जहां राजे महाराजे लोगों को भी थोड़ी सी खुशी पाने के लिए ऐसी मेहनत करनी पड़ती थी कि आजकल वर्कर भी उससे कम मेहनत करता है। आजकल का एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास जो सुख भोगता है, आपके पुराणों में आपके माइथोलॉजी में जो स्वर्ग की कल्पना है वो बड़ा उसी के बराबर है। दवाई खा करके ठीक इतना है कि आप अमर नहीं हो पाते हैं, पर जो इच्छा पूरी कर पाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और वो सारी इच्छाएं जो स्वर्ग में है सब आप चाहें तो भर लेते हैं। इसीलिए आजकल के पढ़े लिखे लोगों को अब स्वर्ग पर्ग में कम इंटरेस्ट है। अच्छा है, असली स्वर्ग की चाहत रखे तो बेहतर है। तो स्व का अर्थ होता है आनंद और उसी से स्वर्ग शब्द बना। हम भी सुखी हैं पर जितना इंद्रियों को अच्छा लगता है, इसीलिए जिंदगी भर हम दुखी रहते हैं क्योंकि सुख का लिमिटेशन है। एक चीज खा खा करके बोर हो जाते हैं फिर दुखी हो जाते हैं, एक घर में रह रह करके बोर हो जाते हैं फिर दुखी हो जाते हैं, नया घर लेते हैं, एक जगह पर रह करके बोर हो जाते हैं फिर नया घर जगह लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, सुख में भी दुखी हो जाते हैं। पर एक ऐसा परम आनंद जहां आपको आपके इंद्रियों की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा, वो स्व भूर भुव स्व है, सत चित आनंद, जिसको आप सच्चिदानंद बोलते हो, जिसको जिस आनंद को पाने के लिए हर व्यक्ति तरसता है, वो कितना भी धनी हो कितना भी गरीब हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो कितना भी अनपढ़ हो, हर व्यक्ति अपने लाइफ से खुश नहीं है, उसको और खुशी चाहिए। क्यों? जो कुछ खुशी है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड खुशी उस परमात्मा को पाने में है। इसीलिए वो परमात्मा सच्चिदानंद है, सत है, चित है, आनंद है। दूसरी भाषा में, वैदिक भाषा में, वो भू है, भुव है और स्व है। अगला हिस्सा मंत्र का आता है, गायत्री मंत्र का। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। सवितुः, इसको अगर ऑर्डर में लाएं तोड़ के, तत् सवितुः वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि। सवितुः देवस्य, उस सविता देव का जो वरेण्य भर्ग है उसको हम धारण करें। सविता क्या है? सविता प्रसविता, जो प्रेरणा देता है, जो इंस्पायर करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, उसको सविता कहते हैं। आजकल सूर्य को भी सविता कहते हैं क्योंकि सूर्य प्रेरणा देने वाला, सुबह सूर्य उगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब जग जाते हैं, सबके अंदर नई स्फूर्ति आ जाती है। इसीलिए सूर्य भी सविता बना, सविता प्रसविता वा, पैदा करने वाले को भी सविता बोलते हैं, सूर्य को भी पैदा करने वाला मानते हैं। सूर्य नहीं होता तो ये धरती में ये हलचल नहीं होते है? ना हम होते, ना ये पेड़ पौधे होते, ना ये साइकिल होता, हवा का, पानी का, धूप का। तो सूर्य उस उत्पत्ति का, वो क्रिएशन का कारण है जो इस प्लैनेट में है। पर और एक उससे भी बड़ा क्रिएटर है, उत्पादक है, इंस्पायरर है, जो सूर्य को भी पैदा करता है, जो सूर्य जैसे ट्रिलियन ट्रिलियन सब स्टार्स को भी पैदा करता है, उसको इंस्पायर करता है, जो ट्रिलियन सब गैलेक्सी को भी पैदा करता है, वो परमात्मा है, परम सविता। तो मंत्र में सूर्य को प्रार्थना नहीं की गई, जो आजकल लोगों में थोड़ा मिसपरसेप्शन है। वो ईश्वर जो सविता है, जो सबको पैदा किया है, जो सबका प्रेरणा का स्रोत है, उस सविता का, सविता देवस्य, देव का अर्थ होता है दानात बा, दीपनात बा, द्योतनात बा, द्युस्ताने भवती दिवा। जो कोई कुछ देता है, जो दूसरों को प्रकाशित करता है, जो खुद प्रकाशित होता है, उसको हम देवता कहते हैं। सिंपल भाषा में बोलें, जिसका हमारे लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है, हमारे मैनिफेस्टेशन में, हमारे अपब्रिंगिंग में, वो सब देवता है। वो मां हो, बाप हो, जैसे कि आप पढ़ते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मां भी देवता है, पिता भी देवता है, आचार्य भी देवता है। क्या भाव है? मां, बाप, टीचर्स, हमारे यहां तो हवा, पानी, पेड़ पौधे सबको पूजते हैं, सब देवता हैं। जिसका भी मेरे लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है, मेरे पैदा होने में, मेरे अपब्रिंगिंग, मेरे बढ़ने में, मेरे लाइफ को मैनिफेस्ट करने में, कि सूरज नहीं होता तो मैं नहीं होता, हवा नहीं होता तो मैं नहीं होता, पानी नहीं होता तो मैं नहीं होता, ये नदियां नहीं होती, ये पहाड़ नहीं होते, ये पशु पक्षी नहीं होते, जो होल इकोलॉजी मेरे लाइफ के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है। तो इस इकोलॉजी में सब कुछ आ जाता है, वो जिंदा हो, वो जड़ हो, चेतन हो। इसीलिए हमारे यहां हर तरह के जड़ चेतन सबको हम देवता मानते हैं। नदी को भी पूजते हैं, पेड़ को भी पूजते हैं, सांप को भी पूजते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी पूजते हैं, गाय बकरी सबको पूजते हैं। जिसका भी मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है वो देवता है। देवता का अर्थ ईश्वर नहीं है, मेरे लाइफ में जो जिसका कंट्रीब्यूशन है, मेरे मां बाप। इवन आज भी आम भाषा में अगर कोई किसी का बड़ा उपकार कर देता है, कोई गरीब आदमी, आप उसको, उसकी जब नीड हो, जरूरत हो, आप उसको मदद कर देते हो, कोई बीमार आदमी की आप इलाज करा देते हो, ठीक कर देते हो, उसके मुंह से क्या निकलता है? आप मेरे लिए भगवान हो। वो जो देवता का कंसेप्ट है कि जिसका भी मेरे जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन है वो मेरे लिए देवता है। भारतीय संस्कृति में, वो इंडियन कल्चर में, वो डीएनए में है। सिर्फ गड़बड़ी है पूजा करने की तरीका में। अब पूजा के नाम पर हम आरती उतारने लग जाते हैं। पूजा का अर्थ रहता है खुशी, खुश करने की इच्छा। आपको पता है जब आप मंदिरों में पूजा करते हैं, पूजा के बाद आप क्या लेकर के आते हैं बाहर? प्रसाद। आपको पता है प्रसाद का रियल ट्रांसलेशन क्या है? खुशी। तो इसका मतलब क्या है? पूजा का अर्थ होता है खुश कराने की विधि। आप किसी तरीके से किसी को खुश करते हैं, खुश करने के बाद जो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, जो रिजल्ट होता है, वो होता है प्रसाद। अब क्योंकि हम नकली तरह से नकली चीजों को खुश करते हैं, तब खुशी भी नकली तरह से आता है। अब क्या आता है खुशी में? लड्डू आता है, फल आता है। महाराज जरा प्रसाद दे दीजिए, महाराज एक केला पकड़ा देते हैं। अब प्रसाद का मतलब तो खुशी होती है। अब केले से ही खुश करो, क्योंकि आप गलत चीजों को गलत तरीके से पूछते हो तो गलत खुशी तो मिलेगी ही, मतलब उसी से हम खुश रहते हैं। पूजा जिससे आप, मां बाप को आरती उतारने से मां बाप थोड़े ही खुश होते हैं। जिंदा मां बाप को रिस्पेक्ट करो, उनके ख्याल रखो, उनसे अपनी बातें शेयर करो, दैट्स इट। पूजा हो गई, फिर जो उनके मुंह से निकलेगा वो उनका प्रसाद होगा। अब गाय को पूजा करने के लिए उसकी तिलक लगा के, माला डाल के आरती उतारो, जय गो माता। अब थोड़ी गाय तो गालियां देगी, अगर वाणी होती। जिंदगी भर मेरे गले में पटका बांध रखा है, रस्सी बांध रखी है, मेरे बछड़े को एक एक बूंद दूध पीने नहीं देता है, आ गया गाय माता करके मेरी पूजा उतारने। अगर उस बोल सकती ना, कितनी गालियां देता है ये गाय पूजने वालों को। पूजा करने की शौक है, रस्सी खोल दो, हरे घास खिला दो, मेरे बछड़े को भी दूध पिला दो, वो पूजा है। उसके बाद गाय के मन में जो विचार आएगा वो उसका प्रसाद है। इस पूजा करने की तरीके के कारण हमारे सारे पवित्र नदियां गंदी हो गई। हम चले गंगा आरती देखिए, आजकल तो फैशन बन गया ये 10-20 साल से। खैर ये टूरिज्म का अच्छा सोर्स बना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लाइफ की सारी गंदगियां गंगा में यमुना में ही डाली। यहां ह्यूस्टन में भी देखता हूं, यहां ह्यूस्टन से भी गंदगी लेकर जाते हैं जी। क्या जी भारत में गंगा में डालेंगे? पूजा हो गई, पूजा के बाद जो ट्रास बना वो फूल निकल गए, जो क्या करेंगे जी, इसके पेड़ के नीचे डाल दो कुछ नहीं, वो वहां गंगा में डालेंगे। इनका वहां गंदा करते करते संतुष्ट नहीं मिले, अमेरिका की कचरा लेकर भी गंगा में डालोगे पुण्य कमाने के लिए? गंगा की पूजा करनी है थी गंगा को साफ रखते, उसको आदर करते। पानी का आदर क्या होता है कि पानी को साफ रखो, निर्मल रखो, कि वो आपके भी पीने लायक हो, आपके पूजा के लायक हो, आपके बच्चों के यूज करने लायक हो। वो तो हमने छोड़ा ही नहीं, हमने पूजा करने में गलतियां की और करते जा रहे, और हमारे रिलीजियस लीडर भी अभी तक समझ नहीं पा रहे कि उनकी कहां गड़बड़ी है, और वो हिम्मत नहीं है कि लोगों को बोल सके। पर देवता को चुनने में, समझने में हमारी गलती नहीं है। वेस्टर्न लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, समझ नहीं पाते ये हिंदू लोग क्यों गाय को पूजते हैं, बकरी को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं, समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि ये सब भगवान बना के पूजते, नहीं, वो कंसेप्ट हमारे लोग भूल चुके हैं, पर उनके डीएनए में है कि देवता का अर्थ जिसका भी मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट है वो देवता है, वो जड़ या चेतन है, और उसको सत्कार करना, उसको सम्मान देना, उसको खुश करने की जो तरीका है उसको पूजा कहते हैं। और वो परमात्मा जो उत्पादक है, पैदा करने वाला है, वो भी परम देवता है, वो सबको खुश करता है, सबका कंट्रीब्यूटर है। उस सविता देव का जो वरेण्य भर्ग है, भर्ग का अर्थ होता है भुना हुआ चीज, भुना हुआ चीज, भुना हुआ चीज समझते हैं, जिसको आप भाजी बोलते हैं। हमारे यहां सफाई करने की बहुत सारे सोर्स हैं, हवा से, पानी से, आग से, हम सब साफ करते हैं। आपकी जो सोना है, लोहा है, चांदी है, आप कैसे उसको साफ करते हैं? आग में तपाते हैं। जितना ज्यादा तपे उतना ज्यादा शुद्ध होता है, उसको वैदिक भाषा में कहते हैं भर्ग, तपा तपाया शुद्ध। इसीलिए हमारे संस्कृति में जो जो शब्द बना साधना का, अपने आप को प्यूरिफाई करने की जो भी एक्टिविटीज है उसको हम क्या कहते हैं? तपस्या। तप का मतलब होता है तपाना, आग में तपता है, पर अपने अंदर भी मन में इतनी आग पैदा करो कि बुराइयां नष्ट हो जाएं। जब बुराइयां नष्ट हो जाएं तो भी हम शुद्ध हो जाते हैं, वो तपस्या। हमारा शरीर तो बाय नेचर गंदा है, पर आपकी आत्मा बाय नेचर शुद्ध है, परमात्मा बाय नेचर शुद्ध है। तो भक्त प्रार्थना करता है गायत्री मंत्र के द्वारा कि उस प्रेरक उत्पादक परम देव के जो भर्ग है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसमें कोई रज्जी भर भी, कोई रत्ती भर भी कोई दाग नहीं है, कलंक नहीं है, पूर्ण शुद्ध है, और जो कि वरेण्य है। वरेण्य का अर्थ होता है एडोरेबल, एक्सेप्टेबल। वर शब्द जानते हैं? जो शादी ब्याह होता है, लड़का को, दुल्हा को वर बोलते हैं, लड़की को वधु। आपको पता है क्यों बोलते हैं? हमारे ट्रेडिशन में लड़की वाले जो शादी होती है तो लड़की वाले होस्ट होते हैं, लड़का गेस्ट बन के आता है, ताम झाम के साथ आता है, और लड़का को चुना जाता है। प्राचीन काल में लड़कियां लड़के चुनते थे, लड़के नहीं चुनते थे। जब मेल डोमिनेटेड कल्चर बना, अब लड़के चुनते हैं। स्वयंवर प्रथा से लेकर हजारों प्रथाएं थी, लड़कियों को अधिकार था, लड़कों को नहीं था। लड़की ने चुना या लड़की के मां बाप ने चुना लड़के को, जिसको चुना गया। जब आप चुनते हैं, जब चूज करते हैं, तो क्या चूज करते हैं? जो बेस्ट है। आपके पास 10 ऑप्शन है, आप एक चुनते हैं, तो दैट मीन दैट इज द बेस्ट फॉर यू। वर का सिंपल मतलब होता है जिसको चुना गया और उसका नॉर्मल मीनिंग होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो चुना जाता है। और जिसको आप चुनते हैं, आप सब हमेशा अपने नजर से अच्छा ही चुनते हैं, उसको वर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो चुना गया है लड़की के द्वारा या लड़की के मां बाप के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। वरेण्य चुनने लायक, श्रेष्ठ, एडोरेबल, एक्सेप्टेबल। उस परमात्मा का, सविता देव का, सविता मतलब पैदा करने वाला, प्रेरित करने वाला देव का, जो वरेण्य, जो एडोरेबल स्वरूप है, जो कि शुद्ध है, उसकी प्योर है, जिसमें तिल भर भी कहीं कोई दाग नहीं है, एब्सोल्यूट प्योरिटी है, उसको हम धीम ही धारण करें। और अंतिम वाक्य धियः, धियो संधि में धियः, यः नः प्रचोदयात्। नः मतलब हमारा, आवर्स। धी कहते हैं बुद्धि को, इंटेलेक्ट को। हमारी उस धी को वो परमात्मा, जिसकी मैं प्रार्थना करता हूं, वो प्रचोदयात, प्रेरित करे। मे ही इंस्पायर आवर इंटेलेक्ट। पूरे गायत्री मंत्र इतना प्रसिद्ध है, पर उसका मांगा क्या जाता है इसमें? बुद्धि को प्रेरित करो, बुद्धि को प्रेरित करो। आजकल किसको बुद्धि चाहिए भगवान से? पैसा चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, बेटी की शादी हो जाए, बच्चों के जॉब लग जाए, बीमारी हो तो ठीक हो जाए, वगैरह वगैरह। मीनिंग पता होता तो कोई नहीं भूर्भुवस्व गाता, बोले ये तो कोई है ही नहीं इसमें ऐसा कुछ भी। वो बिना मीनिंग समझे, लोगों ने कहा, बाबाओं ने कहा, पंडितों ने कहा, आचार्यों ने कहा, वो शास्त्रों में लिखा है, तो पढ़ गए बिना मीनिंग समझे। कभी कभी 99.99% नुकसान ही होता है, पर कभी कभी बुद्धू आदमी भी फायदा, अनजाने में फायदा कर लेता है। कहेंगे ऐसा तो कुछ है, इसलिए आजकल नए नए मंत्र बहुत बन गए हैं जी। है? अब कोई गायत्री मंत्र की जगह तो गायत्री मंत्र में भी हम मिलावट करने लग गए हैं, अलग अलग अपने अपने इष्ट इंसानों के नाम डाल डाल के। बुद्धि की प्रार्थना ही क्यों की गई हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, और क्यों इस मंत्र को इतना महान माना गया? क्योंकि यही बुद्धि तो है जो आपको पशुओं से, मुझे पशु से अलग करता है। पशु और मेरे में क्या फर्क है? एक जानवर में और मेरे में क्या फर्क है? जानवर की इंटेलेक्ट एक लिमिटेड है, वो खाता है, पीता है, सोता है, सेक्स करता है, बच्चा पैदा करता है, डरता है, दैट्स इट। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कि ये मेरी मां है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये पड़ोसी है, ये बच्चे हैं, पशु नहीं कर सकता। मुझे ये पता है कि ये इसको रिस्पेक्ट देना है, इसको नहीं देना है, इसकी क्रिटिसाइज करना है, इसको प्रेज करना है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन, ये इंसान को इंसान बनाता है। जिस व्यक्ति में जितना डिस्क्रिमिनेटिव पावर, इंटेलेक्ट कम होता है, वो उतना जानवर के करीब नियर होता है, क्लोज होता है। जितना ज्यादा होता है, वो देवत्व के करीब जाता है, नियर होता है इंसान। इसीलिए हमारी आम भाषा में बोलते हैं, कोई बहुत गलत आदमी हो, खराब आदमी हो, हम इसको क्या बोलते हैं? खराब का जानवर हो गया है। कोई अच्छा काम करे तो क्या कहते हैं? वो तो देवता तुल्य आदमी है। ये क्या है? सिर्फ बुद्धि का खेल है। एक वाक्य कह के खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। ये बुद्धि का खेल क्यों है? अगर आपकी बुद्धि में ये समझ है कि चोरी करना बुरी बात है, तो आप कितना भी गरीब हैं, कितनी भी मजदूरी करके रोज आपको $5 भी नहीं मिलता हो, तो भी अगर किसी के आप लाखों डॉलर का बैग मिलता है, तो आप पुलिस स्टेशन में जमा करते हैं। हजारों लाखों एग्जाम्पल हमें मिलता है, देखते हैं। पर आपकी माइंडसेट अगर है कि चोरी करने में क्या बुराई है, सब जायज है, लाइफ में जहां जो जरूरत पड़े तो मैं ट्रिलियनरी हूं या बिलियनरी हूं तो भी करप्शन करता हूं। करप्शन जब करता हूं तो मैं लाखों लोगों के टैक्स को ही हेराफेरी करता हूं, पैसे को, और मुझे कोई गिल्टी फीलिंग नहीं होती है। वो क्या है? यही बुद्धि है, यही डिस्क्रिमिनेटिव पावर है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, पशुओं से अलग करता है। इसीलिए हम इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं, इसीलिए ऋषि मुनियों से लेकर आज तक सभी आचार्यों को, साधुओं को, संत को यह मंत्र सबसे महान लगा, क्योंकि इस मंत्र में हम सिर्फ वही प्रार्थना करते हैं। हम ये भी नहीं मांगते हैं कि मुझे बुद्धि दो, इट्स ऑलरेडी विथ मी, मेरी बुद्धि को और तीखा बनाओ और तेज बनाओ, इंस्पायर करो, प्रचोदयात प्रेरित करो कि वो ज्यादा प्रॉपर डिसीशन मेकिंग में मुझे हेल्प कर सके, प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर सके, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करने लायक क्या करने लायक, क्या मानने लायक क्या मानने लायक, तो मैं ज्यादा अच्छा इंसान बनूंगा। ये इस गायत्री मंत्र का भाव है। आखिर में मेरे साथ सब मिलकर बोलिए, एक छोटा सा श्लोक है, आइए। केत, पहले मैं बोलूंगा आप मेरे साथ बोलिए। केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्य, धनहीन जनो जघन्य, केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य, न जनो जघन्य, व्यासो वदत्यखिल शास्त्र गिरां प्रणीता, सो वदत्यखिल शास्त्र गिरां प्रणीता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। एक अच्छा श्लोक मिला। कुछ लोग बोलते हैं कि जिसके पास धन नहीं वो सबसे खराब व्यक्ति है, कुछ लोग व्यक्ति बोलते हैं जिसके पास गुण नहीं वो सबसे खराब है। महर्षि व्यास जो समस्त शास्त्रों को रचने वाला है वो बोलते हैं जो नारायण को याद नहीं करता वो सबसे खराब आदमी है। आप सबको नारायण शक्ति दें। ओम शांति।